नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे, कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश में रक्तदाता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश, उत्तरी हिस्सों में लू और भीषण गर्मी का असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के अपुलिया पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने आज दोपहर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। उन्होंने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने रक्षा के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल हर पल अपने ध्येय जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करता है। श्री धनखड़ आज जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल की 154वीं बटालियन के प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे बीएसएफ के जवानों के बीच आकर नई ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बीएसएफ के जवान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं, जो बेमिसाल है। इस मौके पर उन्होंने जवानों से संवाद किया और उनके साथ पौधरोपण भी किया। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इनमें समय की मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको नए कानूनों में ग्रामीण इलाकों से संबंधित धाराओं की जानकारी दे रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 146 गैर कानूनी अनिवार्य श्रम से संबद्ध है। धारा 291 पशुओं के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के लिए है। चोरी के लिए धारा 303, झपटमारी के लिए धारा 304, पशु को मारकर या अपंग करके क्षति पहुंचाने के लिए धारा 325 में प्रावधान है। इसी तरह धारा 326 में चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत करना, जिसमें कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति या मनुष्यों के लिए भोजन या पेय के लिए या जानवरों के लिए पानी की आपूर्ति को कम करने जैसे कृत्यों से संबद्ध है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 34 में कहा गया है कि किसी गांव के मामलों के संबंध में नियुक्त अधिकारी अपने निकटतम मजिस्ट्रेट या पास के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को गांव की जानकारी देने के लिए बाध्य है। धारा 164, 165 और 166 भूमि या पानी जैसी अचल संपत्ति से संबद्ध विवादों के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताती है। 5 दिन की हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। इसमें दुनिया भर से लगभग 20 लाख तीर्थयात्री सऊदी अरब के मीना में एकत्र हो रहे हैं। इस बार हज यात्रा में भारत से 1,75,000 से ज्यादा तीर्थयात्री शामिल हो रहे हैं। इनमें से 1,40,000 यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए वहां पहुंचे हैं। इस साल सबसे ज्यादा 5,000 भारतीय महिला तीर्थयात्री मेहरम या बिना किसी पुरुष अभिभावक के हज कर रही हैं। हज यात्रियों ने मीना में इकट्ठा होने के लिए पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू की। कल ये हज यात्री अराफात के मैदानों में मुख्य नमाज अदा करेंगे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन इस महीने की 15 से 21 तारीख तक चेन्नई में होगा। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य सिनेमा प्रेमियों तक अच्छे सिनेमा को पहुंचाना है। आकाशवाणी से बातचीत में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की क्षेत्रीय प्रमुख रोहिणी गोवथामन ने कहा कि पहली बार ये कार्यक्रम चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और पुणे शहरों में होगा। समारोह के पहले दिन चार्मी हैमिल्टन जेम्स की बिलियन मोली एंड ऑटर लव स्टोरी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही 18 जून को रेड कार्पेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां थिएटर के प्रसिद्ध कलाकार पहुंचेंगे। देव नारायण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने आज जयपुर में सचिवालय स्थित बोर्ड के कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर श्री भड़ाना ने कहा कि वे इस दायित्व के माध्यम से सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देव नारायण बोर्ड के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बोर्ड द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों और विद्यालयों में छात्र हित के मद्देनजर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर देव नारायण बोर्ड के अधिकारी और कार्मिक भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस है। इस मौके पर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बूंदी में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने रक्तदान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिए। झालावाड़ जिले में रक्तदान शिविर और संगोष्ठी के जरिए लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। जिले के झालरापाटन में माहेश्वरी समाज की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 150 से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्र किया गया। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर आज जिला मुख्यालय पर सभी सरकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया। कोटा में रेलवे अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 33 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। सांसद ओम बिरला ने विश्व रक्तदाता दिवस पर कोटा में रक्तदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए सभी से रक्तदान देने की अपील की। श्रीगंगानगर में आयोजित शिविर में 50 यूनिट से अधिक रक्त इकट्ठा किया गया, साथ ही रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। बाड़मेर में जालीपा सैनिक छावनी में लगे शिविर में सेना के अधिकारियों और जवानों ने रक्तदान किया। पाली में रक्तदान करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉ सौम्या गुर्जर की पहल पर जयपुर योग महोत्सव 2024 के तहत आज चित्रकूट स्टेडियम में योग शिविर आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इसमें शिरकत की और योग अभ्यास किया। महोत्सव के तहत आगामी 16 और 17 जून को लगातार 24 घंटे सूर्य नमस्कार सहित विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से जयपुर में जलमहल की पाल पर भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों के लिए विशेष जागरूकता और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इन बलों के 180 अधिकारियों और जवानों ने सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के विभागीय कलाकारों ने योग पर एक गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सहायक आचार्य डॉ पुनीत चतुर्वेदी के नेतृत्व में संस्थान की टीम द्वारा योग आसनों और क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। सवाई माधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज खाट खुर्द के सरकारी स्कूल में योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्यूरो द्वारा योग पर मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सही जवाब देने वाले विजेताओं को ब्यूरो की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह को रोजाना योग करने का संकल्प भी दिलवाया गया। पाली में योग दिवस की तैयारियों के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। टोंक में भी इसी सिलसिले में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बूंदी में पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में सीमा सुरक्षा बल की 13वीं वाहिनी की ओर से आज बाड़मेर में आमजन को योग के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के समाचार हैं। जयपुर में सुबह आसमान में धूल छाई रही, लेकिन इसके बाद दिन भर तेज धूप और गर्मी रही। भरतपुर में आज दोपहर में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली।
भरतपुर में आज भी मौसम में बदलाव आ गया। सुबह से ही जब गर्मी व उमस से लोग परेशान हो रहे थे, तो वहीं दोपहर बाद धूल भरी आंधी चलने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन बाद में करीब आधा घंटा तक हुई बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कभी तेज तो कभी हल्की हुई बरसात का लोगों ने पूरा आनंद उठाया। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्दी ही प्री मानसून सक्रिय हो जाएंगे और अब की बार बरसात भी पहले की अपेक्षा ज्यादा होगी। शिवकुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
कोटपूतली और विराटनगर तथा आसपास के इलाकों में भी दोपहर में आंधी आई। इसके बाद बूंदाबांदी होने से तापमान में कमी आई। उधर बूंदी में दिन भर गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया। शाम को बादल छाने से गर्मी कुछ कम हुई। नीमका थाना में शाम 5 बजे से बारिश शुरू हुई। जिले के श्रीमाधोपुर, पाटन और उदयपुर वाटी में भी पानी बरसा। उधर उत्तरी जिलों में लू के कारण लोग परेशान रहे। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं तेज लू चलने के आसार हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज से ग्रीष्म महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस शोभा यात्रा में देश भर से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंच गए हैं। उन्होंने कई देशों के प्रमुखों के साथ आज द्विपक्षीय बैठकें की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश में रक्तदाता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और राज्य में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के समाचार हैं। वहीं उत्तरी हिस्सों में लू और भीषण गर्मी का असर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।